शांति, आदरणीय संतोष दीदी जी का हम भक्ति के इस क्लास में बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। सभी एक हाथ की ताली से भाई बहने स्वागत करेंगे। आप बाबा के ऐसे अनन्य रतन हैं जो स्वयं मम्मा बाबा की पालना में पले हैं, और उसके बाद भी दादी ब्रजेंद्रा जिन्होंने सर्वप्रथम शिव बाबा का अवतरण देखा था, उनके साथ आप मुंबई में वर्षों तक सेवा में राइट हैंड बन करके रहे, और वर्तमान में आप मुंबई, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सेवा केंद्रों के डायरेक्टर हैं। आप सोशल सर्विस विंग के चेयरपर्सन हैं और मधुबन के भी मैनेजमेंट में आप पूरी तरह से सहयोगी हैं। वर्तमान समय आप काफी समय रह करके मधुबन में अपनी सेवाएं देते हैं। पिछले 60 वर्षों से बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप से आप सेवाएं दे रहे हैं। आपके लिए मैं कहूंगी, प्रीति को पावन बनाना आपसे सीखे कोई, जीवन को सद्गुणों से सजाना आपसे सीखे कोई। आपके जीवन का हर लम्हा ऐसे गुजरा है कि कहेंगे भगवान को अपना बनाना आपसे सीखे कोई। तो आप, जैसे आपका नाम है, आप बाबा की एक संतुष्ट मणि हैं जिसकी झलक और फलक आपके चेहरे से दिखाई देती है। एक नामी एका नामी, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, उसके तो आप जैसे अवतार हैं। और आप, आपका विषय है वर्तमान समय प्रमाण, तपस्या का महत्व क्या है। तो हम सभी को पता है कि जो संकट का समय आज विश्व पर चल रहा है, उसके लिए स्वयं के विघ्नों को भी समाप्त करने के लिए और अन्य आत्माओं के भी विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें तपस्या की आवश्यकता है। तो कैसे हम वो तपस्या करें, क्या महत्व है, वो स्पष्ट करेंगे आदरणीय दीदी।
ओम शांति। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनना अर्थात ही तपस्वी बनना। बाबा कहते हम बच्चों को, बच्चे तुम बच्चों की चलन, तुम बच्चों का ज्ञान, तुम बच्चे के बच्चों के गुण देख करके तुम्हें कोई भी आज पहचान लेता है कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। परंतु बाबा हमारे से ये चाहते हैं कि जैसे दुनिया हमारे को ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाम से पहचानती है, हमारे को तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी के नाम से वो पहचाने। ऐसी योग की तपस्या, ऐसी स्थिति हम बच्चों को बनाने की आवश्यकता, क्योंकि हम सब बाबा के आशा के दीपक हैं। इसीलिए बाबा ने तो हमारी सारी आशाएं पूरी कर दिया। हम यही गीत गाते हैं कि पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा। परंतु अभी तक बहुत बड़ा काम रहा है, बाप को प्रत्यक्ष करने का काम अभी तक बाकी है। और हमेशा कहा जाता है सन शोज फादर, बाप का शो करने वाले हम बच्चे हैं, और हमारी तपस्या के द्वारा, हमारे धारणाओं के द्वारा ही बाप को प्रत्यक्ष करना। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई पड़नी चाहिए और तुम्हारी सीरत से बाबा की सूरत दिखाई पड़नी चाहिए। तुम्हारे अंदर वो बाबा के गुण आ जावे जो औरों को ऐसा लगे कि ये किसके बच्चे हैं, उनको पूछना पड़े। वैसे भी लौकिक में जो गुणवान बच्चे होते हैं तो जरूर पूछा जाता है कि ये आखिर किसका बच्चा है। माँ का नाम नहीं आता है, बाप का नाम बाला होता है, और अगर कुपात्र निकलता है तो भी बाप का नाम बदनाम होता है। तो बाबा कहते कि तुम बच्चों में ऐसी क्वालिटीज आ जावे जो सबको बाप याद आवे, जैसा मीरा को देख के श्याम याद आता है वैसा तुम बच्चों को देख करके बाप याद आना चाहिए। उसके लिए चाहिए तपस्या, और तपस्या का आधार जो है वो है त्याग, और त्याग का आधार है वैराग। जब तक वैराग नहीं है तब तक त्याग नहीं होता है, जब तक त्याग नहीं है तब तक तपस्या नहीं होती है, और जब तक तपस्या नहीं है तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। वर्तमान समय जो चल रहा है, बाबा ने तो हम बच्चों को पक्का करा दिया है कि बच्चे नथिंग न्यू, जो होता है कल पहले के माफी की होता है। इसीलिए जो भी दृश्य जो भी वातावरण हम देखते हैं उसमें आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि अनेक बार हमने देख लिया है। बाबा का बनने से पहले ही दिन बाबा ने हम बच्चों को बर्थडे की गिफ्ट तीसरा नेत्र दिया, और जिस तीसरे नेत्र के द्वारा हमने सृष्टि के आदि मध्य अंत को अच्छी रीत जान ली। तो जब हम सब कुछ जानते हैं, जानने वाले के लिए वो बात जब सामने आती है उसको कभी भी कोई नया नहीं लगता, कोई आश्चर्य नहीं लगता, कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि बाबा को हमेशा यही बात ध्यान में रहती थी, और हम बच्चों के ध्यान में बाबा दिलाते थे कि ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कभी भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वो मात्रा ही नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन की। तो जैसे क्वेश्चन की मात्रा नहीं होनी चाहिए वैसे ही आश्चर्य की मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तीनों कालों का पता है, तुम त्रिकालदर्शी बच्चे हो, इसीलिए साक्षी होकर के इस ड्रामा को देखते हुए सदैव साथी को साथ रखते हुए आगे बढ़ते चलो। साक्षी स्थिति जो है वो हमें जीरो भी बनाती है और इस ड्रामा का हीरो भी बनाती है, क्योंकि साक्षी बनने से ही एक सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकते किसी भी बात को, और उच्च पद प्राप्ति के लिए भी साक्षी स्थिति बहुत आवश्यक है। साक्षी अर्थात ही न्यारा उपराम। जब तक उपराम स्थिति नहीं आती है तब तक इस दुनिया का कोई ना कोई आकर्षण बना रहता है। तो इसीलिए एकदम न्यारे हो जाए, उपराम हो जाए, और उपराम होकर के ऊपर से सर्व को सर्च लाइट दे, सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए ये कार्य बाबा ने हम बच्चों को सौंपा हुआ है। अभी हम देखते हैं कि ऐसी पावरफुल तपस्या, जिस तपस्या के अंदर हमारे पुराने विक्रम विनाश हो, हमारे पुराने संस्कार परिवर्तित हो, औरों के भी विक्रम विनाश करने के लिए ऐसा ज्वाला रूप हो जिससे वातावरण जो है वो एकदम पावरफुल बन जाए, क्योंकि हम साकार बाबा को देखते थे कि स्थिति का वातावरण के ऊपर कितना असर होता है। जब लास्ट में हम बाबा को मिलने जाते थे थोड़ा समय पहले, बाबा अव्यक्त होने के पहले, पहले शुरू शुरू में तो बाबा हमारी बातें सुनते थे, समाचार पूछते थे, सेवा का लेन देन करते थे, परंतु धीरे 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 हमने देखा बाबा की स्थिति इतनी उपराम हो गई थी जो हम बाबा के कमरे में जाते थे तो ऐसा लगता था जैसा भट्टी में आ गए, इतना चार्ज हुआ हुआ होता था वो कमरा। और बाबा के सन्मुख जब जाके बैठते थे तो हमारे संकल्प भी स्टॉप हो जाते। हम अपने मन में प्रश्न लेके जाते थे, बाबा से ये बोलेंगे, बाबा से ये पूछेंगे, पर बाबा ऐसी स्थिति में बैठे हुए होते थे जैसा वहां है ही नहीं। तो हम भी बाबा के सामने जाके बैठ जाते थे। काफी समय दृष्टि देने के बाद बाबा पूछते थे, जैसा संकल्प स्टॉप हो जाते। बाबा पूछते थे, बच्चे कुछ कहना है? सिर्फ सिर हिला सकते थे, मुख नहीं चलता था। तो ऐसी पावरफुल स्थिति जो सामने वाले के संकल्प भी मर्ज हो जावे, उसके लिए साकार बाबा ने बहुत तपस्या किया। आप कहेंगे कि वो तो भगवान का रथ था, इसीलिए उसको तो मदद थी। नहीं, बाबा कहता है मैं तेरा रथ लेता हूं तो उसका किराया मैं तेरे को दे देता हूं। विश्व की पहले नंबर की जो तेरे को बादशाही मिलती है, उस बादशाही के लायक बनने के लिए तुझे तपस्या करनी है। अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए तुझे तपस्या करनी है। उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता है। अपना हिसाब किताब शरीर का चुकतू करने के लिए भी तुझे ही फाइटिंग करनी है उसके साथ। तो ये सब कुछ बाबा ने किया, इसीलिए बाबा ने जल्दी से जल्दी अपनी उस स्थिति को प्राप्त कर ली। संपूर्ण स्थिति कहो, कर्मातीत स्थिति कहो। तो सबसे पहले यही मैं आपको बता रही थी कि तपस्या के लिए चाहिए त्याग, और त्याग के लिए चाहिए वैराग। तो दो प्रकार का वैराग है, एक है हद का वैराग और दूसरा है बेहद का वैराग। अभी जरा समय भारी है, ये समय थोड़ा भारी होता है, जरा आंखें बंद हो जाती है, तो इसीलिए आपको कोई बात भी सुना देंगे थोड़ी हंसी के बीच में तो जरा आंखें खुल जाती फिर सब। तो दो प्रकार का वैराग है, एक हद का वैराग है, एक बेहद का वैराग। हद का वैराग या हद का संन्यास तो हमें मालूम है कि वो टेम्पररी होता है। हद का संन्यास है टेम्पररी, किसी न किसी बात से ठेस लगती है तभी वो मनुष्य के अंदर वो वैराग पैदा होता है। और वो वैराग पैदा होने के बाद उससे किनारा करने के लिए छोड़ छाड़ के चले जाते दूर। अभी तो जंगल नहीं रहे, फिर अपने अपने स्थानों पर कहां जाते। तो एक हद के वैराग की बात आपको सुनाते हैं। एक को हद का वैराग आया, कारण क्या बना? तो उसको उसके युगल के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता था, जिस पर से रोज लड़ाई होती थी उनकी। कभी बोलेगा ये कम है, कभी बोलेगा ये कम है, कभी बोलेगा ये। और उसको रोज बोलता था, मैं एक दिन देखना मैं छोड़ के चला जाऊंगा। वो सुन सुन के वो भी थक गई, उसने बोला भले जा, तेरे को जाना है। तो चला गया छोड़ के, जंगल में चला गया, गठड़ी कुछ दो चार कपड़ा उठाया गया और वहां एक कुटिया में चला गया। जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं मेरे को आप अपना शिष्य बना लो, मेरे को सन्यास करना है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, मेरे को अभी वापस नहीं जाना है। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, अच्छा ठीक है, अभी तुम सेवा करो फिर आगे चल के देखते हैं। तो उसको सारा आसपास का जितना परिसर था वहां झाड़ू लगाने की सेवा दे दी। तो बेचारा दूसरे दिन से झाड़ू लगाना चालू कर दिया। फिर झाड़ू लगाते लगाते देखा उसने तो काफी टाइम हो गया था, 2 बज गया, 2:30 बज गया, पेट में तो चूहे भाग रहे थे। फिर गया गुरुजी के पास, देखा कि ये कुछ करता ही नहीं, खाने पीने का कोई प्रबंध। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी आपके लिए मैं भोजन बनाऊं? अभी ऐसा तो नहीं बोलेगा मैं अपने लिए बनाऊं क्या, तो बोला मैं आपके लिए भोजन बनाऊं। तो गुरुजी ने कहा, मेरा तो आज उपास है और तेरे को अगर भूख लगी है तो हमारे यहाँ बगीचे में बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, ये दूसरे पेड़ है, नींबू के पेड़ है, ये सब, इन सभी के पत्ते इकट्ठे करके इसका रस निकाल के पी लो, हम तो ऐसा ही चलाते हैं। जिस समय उसने ये सुना, नीम का नाम सुना, तो उसका मुंह तो बेचारे का कड़वा हो गया। तो वहां से सीधा उठा और सीधा घर में पहुंचा, वो उसका वैराग उधर ही फिनिश हो गए। तो ये है हद का वैराग। अभी हम लोगों का जो वैराग है वो है बेहद का वैराग। तो बेहद का वैराग जो है, बेहद के वैराग का आधार है ज्ञान, हद के वैराग का आधार ज्ञान नहीं है। वो तो खुद डिस्टर्ब होते हैं, इसीलिए छोड़ के भागते हैं। परंतु हम लोगों ने जो भी कुछ छोड़ा है, बाबा ने कहा है कि बच्चे पुरानी दुनिया ये सड़ी पड़ी है, मरी पड़ी है, ये मुर्दों की दुनिया है, ये बांसी दुनिया है, ये छीछी दुनिया है। तो जब बाबा ने हमें ये रियलाइज कराया और हमने भी किया रियलाइज, तो तभी हमको इस पुरानी दुनिया से वैराग आया। ये दुनिया गई की गई, शुरू शुरू में भी बाबा की जब प्रवेशता हुई तो बाबा ने यही कहा कि अभी दूसरी दिवाली नहीं आने वाली है, यही लास्ट दिवाली है। ये सुन के सभी घर बार छोड़ के भागे, अरे दूसरी दिवाली नहीं आएगी फिर क्यों रहना है इस पुरानी दुनिया में, अभी बहुत सारी दिवालियां आगे चली गई। परंतु वैराग दिलाने के लिए ये समझो जो विनाश की पॉइंट है ना, ये क्लोरोफार्म का काम करती है। जैसा किसी का ऑपरेशन करना होता है ना, तो उसको क्लोरोफार्म दिया जाता है, तभी तो उसको बेहोश करके उसका ऑपरेशन करेगी, नहीं तो उसका ऑपरेशन कैसा कर सकेगी, उसको पीड़ा होगी। तो वैसा ये जो विनाश की पॉइंट है ना, ये क्लोरोफार्म का काम करती है कि अरे ये दुनिया जाने वाली है बस, तो हमको वैराग, अरे दुनिया जाने वाली छोड़ो, क्यों इसको पकड़ के बैठो। तो बाबा ने हम बच्चों को पहले ये रियलाइज किया कराया। तो अभी क्या है, आपस में हम देखते हैं, कभी दो भाई बहन या कोई भी मिलते ब्राह्मण आपस में, तो एक दो से पूछते, कभी विनाश होगा, आप क्या समझते हैं, अभी कितना समय बाकी है, अभी दुनिया को कितना समय बाकी है उसकी चिंता है उनको, पर मेरा कभी विनाश होगा इसकी चिंता नहीं, खुद की इसकी फिक्र नहीं है। इसकी फिक्र न होने के कारण कि कोई भी मेरा श्वास अंतिम श्वास हो सकता। मम्मा को सदैव ये याद रहता था। मम्मा से एक बारी किसी ने पूछा कि मम्मा आप इतने थोड़े समय में इतना कैसा के आगे बढ़ गई, नहीं तो छोटी सी कन्या आई और मम्मा बन गई, तो आपने क्या पुरुषार्थ किया। मम्मा ने कहा, मैं हमेशा यही समझती हूँ कि यही मेरा श्वास अंतिम श्वास। आप बताओ, जिसको ये याद होगा कि ये जो श्वास चल रहा है यही मेरा अंतिम श्वास है, जिसको मौत सदैव याद होगा, उसकी बुद्धि किसी में जाएगी कभी, कभी उसकी अटैचमेंट होगी किसी। एक बार ऐसा ही मम्मा जब बॉम्बे में आई और मम्मा को लेकर के जा रहे थे, प्रदर्शनी थी, इसके लिए बाबा ने खास भेजा था क्योंकि पहली पहली प्रदर्शनी थी। तो मम्मा को कहा कि जाओ देखो कैसी होती है प्रदर्शनी की सेवा, क्या है बच्चों ने ठीक बनाया है नहीं बनाया। मम्मा आई तो उस समय पर रमेश भाई था, निर्वैर भाई था, तो मम्मा को गाड़ी में लेके जा रहे थे कार में वहां। तो रास्ते में इन्होंने क्या किया, वहां देखा सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, और उसमें अभी तो बहुत एडवांस हो गई है साइंस, उस समय तो इतना कुछ नहीं था। तो इन्होंने एक नया देखा वहां पर कि वो कोको कोला की बॉटल थी, उसका कोको कोला इसमें एक बर्तन में पड़ता था, फिर वहां से निकल के वापस उसमें जाके पड़ता था। अभी तो हम लोग फुहारे भी बनाते हैं ना ऐसे, वो ही पानी घुमाते हैं, तो वो ऐसा मतलब घूम रहा था ऐसा फिर देखने के बाद ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा है, हम लोग स्वर्ग में ऐसा कुछ सीन बनाए गए इस हिसाब से। तो मम्मा से पूछा, पीछे की सीट पर मम्मा और जमुना बहन बैठी थी, उनकी जो ब्रह्मणी थी, तो मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कैसा लगा ये? तो मम्मा से भाइयों ने पूछा, मम्मा आपने ये देखा जो ये इसका ये चल रहा था, कोको को लगाओ बर्तन में पड़ता था? फिर मम्मा ने कहा, मैं सारे दिन में एक ही बारी सामने देखती हूँ जब क्लास कराना होती, उसके बाद मैं सामने नहीं देखती, मतलब कहाँ भी नहीं देखती है, उसके बाद सामने देखती नहीं है, वो अपने को ही देखती रहती। अभी देखो ये कितनी ऊंची स्टेज है, कुछ भी सामने क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, मैं कभी नहीं देखती, एक ही बारी देखती। हम लोग सारे दिन में कितनी बारी देखते, सारा समय देखते रहते हैं, बुद्धि चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये है वास्तव में बेहद का वैराग्य, इसीलिए मम्मा मम्मा बन गई। मम्मा को जिस दिन ये मालूम पड़ा कि मैं ही श्री राधा बनने वाली हूँ, मैं ही श्री लक्ष्मी बनने वाली हूँ, ये मालूम पड़ने के बाद मम्मा ने पुरुषार्थ स्टार्ट कर दिया, राधा बनने का पुरुषार्थ स्टार्ट कर दिया, अपने ऊपर मेहनत करने का पुरुषार्थ स्टार्ट कर दिया, सारी सारी रात कोठे पर बैठ के योग लगाने का उसने पुरुषार्थ चालू कर दिया। अभी आपकी और हमारी तो हम क्या बनने वाले, हमारा तो उसका ठिकाना भी नहीं है, कौन सा नंबर बनेंगे क्या बनेंगे, तो भी हम लोगों का अपने ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। अगर हमारे को मालूम पड़े ना कि हमारा फलाना नंबर आने वाला है, हम तो चादर लेके सो जावे मजे से, अभी हमारा नंबर तो फिक्स है, काहे को मेहनत करें। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, बाबा जो कहते हैं दृढ़ता, तो दृढ़ता की, अगर दृढ़ता ऐसी चीज है, वो एक तीली का काम करती है, माचिस की तीली होती है ना कांडी, अगर एक आप माचिस की तीली लगा दो तो सारा जंगल का जंगल जल जाता है। तो उसी प्रकार दृढ़ता वो चीज है, जब हम ये संकल्प ले लेते हैं कि हमें हमारी कमी कमजोरियों को खलास करना है, हमें हमारे अलबेलेपन को खलास करना है, हमें संपूर्ण बनना है, इस दृढ़ता की तीली से हम अपने स्थान पर पहुंच जाते। बाबा कहते हैं मेरे सामने तो तुम संकल्प करते हो, मेरे सामने तो तुम हाथ उठाते हो कि हम दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, परंतु घर में पहुंचने तक दृढ़ता खलास हो जाती है, सिर्फ संकल्प ही रह जाता। तो जिसके कारण क्या होता है, वो जो योग की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए वो नहीं होती, और जब तक वो पावरफुल अग्नि नहीं प्रज्वलित होती है तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप देखो सोने में भी खाद पड़ती है, तो अगर साधारण आग में डालेंगे तो पिघलेगा नहीं, उसके लिए बहुत उनको तेज अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती। तो उसी प्रकार तपस्या जो है, जिसको बाबा ज्वालामुखी तपस्या कहते हैं, जब तक योग की अग्नि इतनी प्रज्वलित नहीं होती है तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। और अभी का जो समय चल रहा है, नाजुक समय, इस समय तो किसी का भी, अभी आते आते ही हमारे को बॉम्बे से फोन आया, एक भाई ने शरीर छोड़ा कोरोना के कारण, एक एक सेकंड में जा रहे हैं, मालूम भी नहीं पड़ रहा है, ऐसा समय चल रहा है, किसी का किस समय पर क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते। तो हमें इस समय पर कितना अलर्ट रहना है, हमें इस समय पर कितना तपस्वी मूरत बनकर के चलना है, जो अंत मते सो हमारी गति अच्छी हो। अंत में बाबा के बिगर और कोई भी याद नहीं रहे सिवाय एक बाबा के, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करने के, एक तो बेहद का वैराग्य आवे कि ये दुनिया सचमुच हमारे लायक नहीं है रहने की, इससे दिल लगाने की बात ही नहीं। तो त्याग एक होता है स्थूल त्याग और दूसरा होता है सूक्ष्म त्याग, रंगीन कपड़े बदली कर डाले, सफेद कपड़े पहन लिए, खान पान की शुद्धि कर लिया, दिनचर्या को थोड़ा बना लिया अपना, ये स्थूल रीति का त्याग है, ये बहुत इजी है, परंतु जो सूक्ष्म त्याग, त्याग का भी त्याग, साकार बाबा ने त्याग का भी त्याग किया। त्याग करने के बाद बाबा ने कभी वर्णन नहीं किया मैंने कौन सा त्याग किया। नहीं तो बहुत लोग सारा दिन माला फेरते रहते, हम देखो आए, हमने ये छोड़ा, हमारा हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा। अरे ये छोड़ा छोड़ा क्या करते हो, तुमने पाया क्या वो तो याद करो। भूतकाल को क्यों याद करते हो, भविष्य को याद करो, तुमको क्या मिलने वाला है इस? तो जब तक हमारे सामने हमारा भविष्य क्लियर नहीं है, तब तक उसको खुशी का पारा नहीं चढ़ सकती, तब तक वो खुमारी नहीं चढ़ सकती है कि हम ही जाकर के ये देवता बनने वाले हैं, हमारा ही ये पद है। बाबा ऐसा वर्णन करता था, एकदम ऐसा इमर्ज, जैसा हम लोग सामने बैठे हुए होते थे, जैसा स्वर्ग को इमर्ज कर देता था। मैं अभी अभी जाऊंगा, मैं मिचनू जाके बनूंगा, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा मेरे मुख में। सिर्फ खुद नहीं बोलता था, परंतु हम लोगों को भी वो फील होता था। तो इतनी हमारी स्मृति पावरफुल हो जावे, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, तपस्या का तपस्या को पावरफुल बनाने के लिए हमारे को व्यर्थ को खलास करना पड़ेगा, व्यर्थ को समाप्त करना पड़ेगा। और व्यर्थ को समाप्त करने का सही तरीका है समर संकल्पों की शक्ति को जमा करना। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को मनन शक्ति का एक बहुत सहज तरीका बताया हुआ। ये स्टेजेस है, अध्ययन, फिर मनन, फिर चिंतन और फिर मगन। तपस्या माना मगन स्थिति है ना, पर मगन स्थिति हमारी कभी बनेगी जब भी हम अध्ययन करके, पढ़ाई पढ़ करके उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, तभी हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, मगन हो जाएगी, ईश्वरीय याद में मगन रहे। फिर सब कर्म करते हुए भी जैसा उससे न्यारे रहेंगे, उसमें अलिप्त होके नहीं रहे। तो ये जो स्थूल त्याग है, जैसा अभी हमने घर बार छोड़ दिया, चलो सबको छोड़ के, ये भी स्थूल त्याग, ये छोड़ना कठिन नहीं है। परंतु जो सूक्ष्म त्याग, मैं और मेरा, ये है माया के आने के दरवाजे। ये जब तक नहीं किया है हमने, तब तक हमारी तपस्या फलीभूत नहीं हो सकती। इसमें मेरा नाम, मेरा मान, मेरी विशेषताएं, मेरी बुद्धि, मेरी सेवा, हम बहुत सेवा करते हैं। आज तो बाबा ने बरोबर लेफ्ट राइट लिया, तुम क्या सेवा करते हो बताया बरोबर। ये जो सब है, मेरा मेरा मेरा, ये मेरे मेरे का त्याग हो जाना, ये है बेहद का त्याग, बेहद का वैराग्य। जब तक ये मेरा मेरा नहीं छूटा है, तब तक त्याग नहीं और तब तक तपस्या भी फलीभूत नहीं। तब तक तपस्वी सदा के लिए तपस्वी नहीं बन सकते हैं। बैठ के तपस्या करना है, कितना समय बैठेगी हम, पर चलते फिरते बाबा की याद रहे, चलते फिरते उसके लगन में मगन रहे, वो लगन में मगन तभी हो सकते हैं जब ही अपना अस्तित्व खलास हो जाए। जैसी जानकी दादी थी, क्या सुनाती थी दादी, दो शब्द सदैव उसके पक्के थे, मैं और मेरा। मैं कौन, मैं आत्मा, मेरा बाबा, बस। मैं बोलती थी दादी ये याद रखने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती, आप तो सारा समय उसी में ही मगन रहते। लास्ट में आपने देखा ना दादी क्या सुनाती, सब कितने खुश होते थे सुनाती थी, सबको लगता था देखो बाबा के बगैर इसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तो सदैव हमारे को बाबा याद रहे, क्योंकि कोई भी क्षण हमारा अंतिम क्षण हो सकता है, कोई भी श्वास हमारा अंतिम श्वास हो सकता है। तो अंत के समय बाबा के बिगर कोई याद नहीं आवे, तो पहले से बहुत समय का इसके लिए अभ्यास चाहिए। अगर बहुत समय अभ्यास नहीं किया होगा तो अंत के समय उस स्थिति में हम नहीं रह सकेंगे और अंत मते सो गते होती, फिर प्राप्ति भी ऐसी होगी। तो अगर हमको ऊंची प्राप्ति करनी है तो हमारे को सदैव बाबा की याद बनी रहे, उसका अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। ये कठिन नहीं है, परंतु अभ्यास की बात। देखो बाबा अव्यक्त होने के पहले लास्ट महामंत्र हम बच्चों को देके गया, दरवाजे में खड़ा होके लास्ट महामंत्र दिया, निराकारी निरंकारी और निरअंकारी भव। अगर ये मंत्र भी याद रहा ना तो भी हमारी लिंक सदैव जुटी रहती। मनसा में निराकारी बनो, वाणी में निरंकारी बनो, नम्रता को धारण करो, क्योंकि नम्रता के आधार पर ही आप विश्व का नवनिर्माण कर सकते। नम्रता नहीं है तो किसी का कल्याण नहीं कर सकते। झुकने वाला कहते हैं दुनिया झुकती है, पर झुकाने वाला चाहिए। किसके आगे झुकती है? जो खुद झुकता है उसके आगे दुनिया झुकती। और कर्म में हमेशा निर्विकारी बन करके चलो। तो इसीलिए मनसा में निराकारी, वाणी में निरंकारी और कर्म में निरअंकारी। मैंने ये किया, मैंने किया तो मरा, मैं आया जहां वहां मरा, मैं नहीं परंतु बाबा। बाबा ने हमें निमित्त बनाया, निमित्त बनने वाले, निमित्त समझ करके चलने वाले निर्माण बन सकते। अगर निमित्त नहीं है तो निर्माणता नहीं है, नम्रता नहीं है, और नम्रता नहीं है तो कल्याण नहीं कर सकते आप किसी का। तो इसीलिए निमित्त भाव रहे, इसका हमें खास ध्यान रखना है। जैसा मम्मा को सदैव याद रहता था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, वो हुक्म चलाए रहा है और हम कठपुतलियां नाच रही हैं। जैसा कठपुतली को नहीं, धागा धागे से नचाने वाला दूसरा होता है, तो हम सब कठपुतलियां हैं, हमको नचा रहा है। तो ये निमित्त भाव जो है ये हमारे अंदर निर्माणता का भाव लाता है, और यही निर्माणता का भाव क्या करता है? विश्व का नव निर्माण करता। तो सदैव हमारी स्थिति ऊंची रहे, सदैव उपराम रहे, सदैव हम सहज अपने बाबा के पास रहे, उसके लिए हमारे को जीवन में हल्कापन चाहिए, लाइट। बाबा ने कहा ना, डबल लाइट की औरों को अनुभूति होवे, आत्मा भी लाइट और ये शरीर भी लाइट। लाइट का दूसरा भी अर्थ होता है ना हल्का, क्योंकि हल्की चीज हमेशा ऊपर जाती है और भारी चीज नीचे रहती है। तो हल्का बनने के लिए बाबा ने हमें कौन सी युक्ति बताई? हल्का बनने के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे सर्व समर्पण हो जाओ, भले प्रवृत्ति में रहे पड़े हो परंतु सर्व समर्पण हो करके अपने को गृहस्थी नहीं परंतु अपने को ट्रस्टी समझ करके चलो। क्योंकि आज समझो हम यात्रा पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं आप खाने के भी सामान उठाएंगे, पकाने के भी सामान उठाएंगे, अनाज भी उठाएंगे, कैसा क्या लेके जाएंगे? तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, थोड़ा बहुत जो कपड़ा वपड़ा होगा वो लेगा और पैसा लेगा, फिर जो चाहिए वहां जाके खरीद करेगा। तो उसी प्रकार तन मन और धन, ये तीन शक्तियां हैं हमारी सूक्ष्म, इनको हम भविष्य में साथ में नहीं लेके जा सकते, इसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता। जब हम इनको ट्रांसफर कर डालते हैं, ट्रांसफर कैसा करते हैं, इसका पुण्य में परिवर्तन करते। जब हम इनको अच्छे कार्य में लगाते हैं, ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, तो ये शक्तियां ट्रांसफर होकर के हजार गुना हमारे को वहां पर प्राप्त होती। हम जब बाबा के साथ अपने मन को लगा के रखते हैं, यहां से हटा देते हैं इस दुनिया से, सब कुछ करते हुए साथ में रहते हुए, और जब हम अपने मन को हटा करके एक बाबा से लगा के रखते हैं, तो भविष्य में हमारे को निरोगी मन मिलता है, मन भटकता नहीं है, यहां भी नहीं भटकता है और भविष्य में भी नहीं भटकता है, ट्रांसफर हो जाता है, सतो प्रधानी बन जाता है। जब हम अपना तन ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो हमारे को निरोगी तन मिलता है। जब हम धन अपना ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसका कई गुना होकर के हमारे को वहां पर मिलता है। तो हम ये जो ईश्वरीय कार्य में जो भी कुछ लगाते हैं, अपने संकल्प, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना समय, तो जो भी हम लगाते हैं वो सब कुछ ट्रांसफर होके हमारे को भविष्य में मिलता है। अभी हम कहे कि यहाँ पर हमारे पास इतना सोना रखा है, वो हम नई दुनिया में लेके जा सके, वो नहीं लेके जा सकते। स्थूल चीज हम कोई भी नहीं लेके जा सकते हैं, परंतु उसको अगर हम पुण्य के कार्य में लगा देते हैं, अच्छे कार्य में लगा देते हैं, तो पुण्य तो बहुत हल्का होता है, वो हमारे साथ में चलता है। पुण्य और पाप ये दो चीजें ही साथ में चलती है। तो जितना जितना हम पुण्य कर्म में अपने समय को लगाते हैं, हमारा समय सफल होता है, हमारा संकल्प सफल होता है, हमारे कर्म सफल होते हैं। तभी बाबा कहता है बच्चे सफल करो, सफलता पाओ, सफल करते जाओ और सफलता को प्राप्त करते जाओ। अगर सफल नहीं करते हैं तो सफलता भी जीवन में नहीं मिलती है, यहाँ भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी और भविष्य में जाके क्या बनेंगे। तो इसीलिए सफल करना सीखो। तो जितना जितना हम सफल करना सीखते हैं, ईश्वर अर्थ करना सीखते हैं, उतना उतना क्या होता है, हमारे जीवन में सफलता आती है और सफलता आने के बाद खुशी होती है। आज देखो बच्चे स्कूल में से पास होके आते हैं तो उसका उनका चेहरा कैसा होता है, उनके घर वाले भी सभी खुश हो जाते, वाह पास होके आ, फेल होके आएगा तो नाचेगा क्या। तो वैसा ही हमारे को जैसे जैसे सफलता आती है वैसे वैसे हमारे जीवन में खुशी बढ़ती जाती, और खुशी बढ़ने के कारण क्या है, हम सदैव बाबा के साथ रह सकते, बाबा के पास रह सकते, वो ईश्वरीय खुमारी रहे, वो नशा रहे कि बाबा सदैव हमारे साथ में, हम बाबा के साथ। और देखो बाबा ने हम बच्चों को, खास तो आप जो प्रवृत्ति वाले हैं, आप लोगों को क्यों प्रवृत्ति में रखा, क्या कारण है? चैरिटी बिगिंस एट होम, आप उनका उद्धार करो। आपको ये नहीं कहा घर बार छोड़ के आ जाओ, आपको कहा आपका काम है उनका उद्धार करना, तो आप उनका उद्धार कैसे करेंगे? उनका उद्धार आप तभी कर सकेंगे जब आप खुद को ट्रांसफर करेंगे, खुद को लौकिक से अलौकिक बनाएंगे। जब हम खुद को लौकिक से अलौकिक बना देते हैं, उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं, घर वाले ज्ञान नहीं सुनते, वो बोलेंगे हमारे को तुम ज्यादा नहीं समझाओ। परंतु हमारे जीवन में जब परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन देख करके उनके जीवन में भी परिवर्तन आता। तो बाबा ने ये बताया हुआ है, तुम रहो प्रवृत्ति में, परंतु प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहो, न्यारे रहो, कमल के फूल के समान रहो, कमल की डंडी नहीं बनना। कमल के फूल के समान रहेगे, अलिप्त होके रहेगे, तो तुम उनका कल्याण कर सकेगे। इसीलिए तुम घर को घर नहीं समझो, परंतु ये समझो कि ये बाबा का आश्रम, घर को आश्रम बनाओ। बाबा कहता है ना अंत में, एक एक घर में सेवा स्थान होगा। सेवा स्थान होगा माना क्या, सेवा स्थान माना क्या, जहाँ पर सेवा होती है। तो वातावरण ऐसा बना दो, पवित्र वातावरण, ऐसा शुद्ध वातावरण बना दो अपनी योग की शक्ति से, अपनी धारणाओं की शक्ति से, जो आने वाले का वहां से कल्याण हो। बाबा कहता है ना सिर्फ समझा, आज कितना समझाया बाबा, सिर्फ तुमने अच्छा समझा दिया उससे कुछ नहीं हुआ, सामने वाले के जीवन में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन तभी आएगा जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो तुम जिसको बताएंगे उसके जीवन में भी परिवर्तन नहीं आएगा। और अंत के समय देखो बाबा क्यों हमें घड़ी घड़ी कहता है, निरंतर मेरे को याद करो, इसीलिए कहता है कि तुम अपने में शक्तियां जमा करो। अंत में तुम्हारे पास क्यों लगेगी, कोई शांति मांगने को आएगा, कोई शक्ति मांगने को आएगा, कोई आनंद मांगने को आएगा। तुम जितना तुम्हारे पास स्टॉक जमा होगा तुम दूसरों को दे सकेंगे। बाबा ने आज भी कहा ना, तुम्हें दाता भी बनना है, विधाता भी बनना है, उनका उनका नसीब भी लिखने का काम तुमको करना। विधाता माना नसीब बनाने वाला, तो अपना नसीब कैसा बनाएंगे, हमें देख करके वो नसीब बनाएंगे। और अंत के समय पर ये भी देखो बाबा ने कहा हुआ है कि ये जो भी साधन है ये सब फेल हो जाएगा, सैटेलाइट खलास हो जाएगा, क्या चलेगा तुम्हारा, ना फोन चलेगा ना ये चलेगा ना लाइट चले, कुछ भी चलने वाला नहीं अंत में। उस समय पर क्या करेगी, उस समय तुम्हारी वायरलेस भी नहीं चलेगी परंतु तुम्हारी वॉइसलेस स्थिति चलेगी। जो तुम्हारी निर्विकारी स्थिति है ना वॉइसलेस स्थिति, वो तुमको काम आने वाली है। और वॉइसलेस स्थिति बनाने के लिए तुम्हारे को योग लगाना। तो जितना जितना तुम्हारी निर्विकारी स्थिति रहेगी उस निर्विकारी स्थिति तुम्हारे को अंत में काम में आएगी। तुम औरों को जाके संदेश दे सकेंगे, तुम्हारे संकल्पों में इतनी ताकत आ जाएगी। जैसा देखो शास्त्रों में बताते हैं कि ब्रह्मा को संकल्प उठा, क्या संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचो, तो रच डाला। एक ब्रह्मा के संकल्प से अगर सृष्टि नई रची जाती है तो क्या इतने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ संकल्पों से दुनिया परिवर्तन नहीं हो सकती। परंतु उसके लिए हम सभी को सामूहिक एक ही संकल्प करना पड़ेगा। ये भट्टियां क्यों रखते, इसीलिए रखते। आप देखो अंधकार है, एक दीवा यहां जला दिया, एक उधर जला दिया, एक उधर जला, उसका प्रकाश कहां तक जाएगा। पर सब सब दीवे आप एक जगह पर जलाओ, देखो कितना प्रकाश पड़ता है। तो उसी प्रकार हम जो जागती ज्योति आत्माएं हैं, जब संगठित रूप में होकर के बैठती है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो सारे विश्व में फैलता है, उसका जो प्रकाश है ज्ञान का वो सारे विश्व में जाता है। हमें भी बल मिलता है बैठने वालों को, और औरों को भी उसका फायदा होता है। तो बाबा यही चाहते हैं बच्चों से कि अंत के समय तुम्हारी ऐसी वाइसले स्थिति, निर्विकारी संपूर्ण निर्विकारी स्थिति जो है वो अन्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए भी काम में आने वाली, औरों तक पहुंच सकेगे तुम उस निर्विकारी स्थिति के आधार पर। इसीलिए तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए योग की जो तपस्या है, योग की जो तुम्हारी अग्नि है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रज्वलित करो। योग के अग्नि को प्रज्वलित करना माना क्या, लगन में मगन रहना, यही योग है। बाबा के लगन में मगन हो जाओ। तो जितना जितना हमारी लगन बढ़ती जाएगी उतना उतना क्या होता जाएगा, हमारा जो योग है वो पावरफुल होता जाएगा, और उससे हमारा भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा। क्योंकि सिर्फ हमको नहीं जाना है नई दुनिया में, सबको लेकर के जाना है। अकेले को जाना तो इजी है, साकार बाबा बताते थे ना, बाबा शुरू शुरू में बाबा को जब पहला साक्षात्कार हुआ नई दुनिया का कि तुम्हारे को ये बनना है, तुम्हें श्री कृष्ण बनने वाला है, तुम्हारे को बनना है, तुमको नई दुनिया में चलना है, बोला मैं बड़ा खुश हो गया, वाह मेरे को चलना है। फिर उसके बाद थोड़े दिन बीते, फिर कहा तुम चलेगा, तुम वहां जाके राजा बनेगा, पर राज किस पर करेगा तुम, उसके लिए प्रजा बनानी पड़ेगी, हाँ उसके लिए दास दासियां बनानी पड़ेगी, अभी करो तैयारी। तो वैसा ही अकेला जाके क्या करेगी, हमारे को भी सबको लेकर के जाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंत के समय ऐसी आत्माएं आएगी जिनमें चलने की भी हिम्मत नहीं होगी। ये टांगों की बात नहीं है, परंतु इस ईश्वरीय मार्ग पर चलने की उनमें हिम्मत नहीं होगी। तुमको अपनी टांगे उनको देनी पड़ेगी, अर्थात उनको मदद देनी पड़ेगी। जैसा कोई लंगड़ा होता है तो उसको क्या दिया जाता है, आधार दिया जाता है। तो उसी प्रकार तुम इतने स्ट्रांग हो जाओ जो खुद तो चलो परंतु औरों को साथ में लेके चलो, तभी तुम्हें विश्व की बादशाही मिल सकती है। ऐसा थोड़ी ताज पहना देगा हमारे को, ऐसा सहज नहीं है, कठिन भी नहीं है पर सहज भी इतना नहीं है। कभी कभी बाबा कहता था नई दुनिया में जाना, राजाई घराने में आना, क्या मासी का घर समझा है क्या तुमने, आप लोगों को याद होगा ना बाबा कहते हैं हमेशा, मासी का घर माना क्या होता है, मासी का घर तो बहुत सहज होता है, बैठे हैं दिल हुआ चलो भाई मासी के घर में, मासी ऐसा थोड़ी बोलेगी क्यों आए तुम, भले आए जी आए, खातरी करती है, इजी होता है ना जाना, मासी का घर माना अपना ही घर होता है। तो उसी प्रकार तुम ऐसा नहीं समझना स्वर्ग में जाना माना मासी का घर है, नहीं उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी जितनी तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी बाबा के साथ उतना तुम मेहनत मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारी जीवन जो है वो तुम योगी जीवन वाले, हम योग लगाने वाले योगी नहीं है। 4 घंटे योग किया, 3 घंटे योग किया, 5 घंटे योग किया, जीवन कोई 4-5 घंटे की होती है? जीवन तो सदा काल की होती है, उसको जीवन कहते हैं। तो इसीलिए हम योगी जीवन वाले हैं, हमारा योग सदैव लगा ही रहे। बैठ के योग लगाना अलग बात हो गई, तुम उसके लिए प्रैक्टिस करो भले, परंतु सदैव हमारा बुद्धि का योग एक के साथ ही रहे। जबकि हम कहते हैं हमारा संसार ही बाबा है, तो उसमें सदैव बिजी रहो, औरों को भी बिजी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो अंत में भी बाबा के बिगर और कुछ याद नहीं आएगा। ओम शांति।
योगी जीवन।